लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे दुर्व्यवहार के शिकार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर उन लोगों के लिए जिन्होंने कलीसिया के सदस्यों द्वारा दुराचार को सहन किया। हमारी अर्थ याचना है कि कलीसिया के भीतर ही वे अपनी पीड़ा का समाधान ढूंढ सकें तथा शांतिपूर्ण जीवन यापन कर सकें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं बुधवार ये आम दर्शन समारोह में संत पापा फ्रांसिस की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, संत पापा फ्रांसिस ने अपने बुधवार ये आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पेत्रुस महागिरजा घर के प्रांगण में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए कहा,
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nella scorsa catechesi abbiamo visto che il primo concilio nella storia della Chiesa fu convocato a Gerusalemme per una questione legata all'evangelizzazione.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। हमने अपने विगत धर्म शिक्षा माला में कलीसिया की प्रथम धर्म सभा की चर्चा की, जो कलीसिया के इतिहास में यरूशलेम में सुसमाचार प्रचार के संबंध में एक सवाल, विशेषकर गैर यहूदियों के बीच सुसमाचार प्रचार की विषय वस्तु से आयोजित की गई थी। 20वीं शताब्दी में एकतावर्धक द्वितीय वैटिकन महासभा ने कलीसिया के स्वरूप को एक तीर्थयात्री ईश प्रजा के रूप में प्रस्तुत किया जो अपने स्वभाव से प्रेरितिक है। सुसमाचार प्रचार की विषय वस्तु प्रथम और द्वितीय महासभा के बीच एक सेतु की भांति है जिसके शिल्पकार पवित्र आत्मा है। आज हम द्वितीय वैटिकन महासभा के बारे में सुनेंगे, जहां सुसमाचार प्रचार को हम कलीसिया की सेवा स्वरूप पाते हैं, जो कभी अकेले उदासी में या व्यक्तिगत रूप में नहीं होती है। सुसमाचार का प्रचार सदैव कलीसिया में होती है। वास्तव में सुसमाचार प्रचार उन बातों को प्रसारित करता है जिसे व्यक्ति ने पाया है। संत पौलुस वह पहले व्यक्ति हैं जो इसके बारे में जिक्र करते हैं। जिस सुसमाचार की घोषणा उन्होंने की और जिसे समुदाय ने स्वीकार किया तथा उसमें सुदृढ़ बने रहे, उसे वही शिक्षा सुनाई गई थी। जिस विश्वास को उन्होंने पाया था, वे उसे विश्वास का प्रसार करते हैं। कलीसिया द्वारा सुसमाचार के संदेश को प्रसारित करने का आयाम ख्रिस्तीय उद्घोषणा की सत्यता की गारंटी देता है। वही संत पौलुस गलातियों के नाम अपने पत्र में लिखते हैं, चाहे वह मैं या कोई स्वर्गदूत ही क्यों ना हो, उससे भिन्न सुसमाचार सुनाए तो वह अभिशप्त हो। श्रोताओं, सुसमाचार प्रचार का कलीसियाई आयाम यद्यपि उसके प्रेरितिक उत्साह की एक सुदृढ़ता में निहित है, यह सुदृढ़ता अपने में जरूरी है क्योंकि हम इसमें अकेले आगे बढ़ने की परीक्षा को छिपा हुआ पाते हैं, विशेष रूप से जब हम इस राह को कठिन पाते और इसकी जिम्मेदारी हमारे लिए थकान भरी लगती है। इसके साथ ही हम कलीसिया के मिथ्य राहों का अनुसरण करने की परीक्षा में सहज ही पड़ जाते हैं, जहां हम संख्याओं और चुनावों के दुनियावी तर्क का शिकार होते अपने विचारों की शक्ति परियोजनाओं स्वरूपों में आधारित हो जाते संबंधों जो हमारे लिए मायने रखते हैं। यह हमारी गलती है। ये सारी चीजें हमारी थोड़ी मदद के लिए होनी चाहिए, जबकि मुख्य चीज कुछ और है। यह पवित्र आत्मा है जो हमें शक्ति प्रदान करते, जिसकी मदद से हम यीशु ख्रिस्त को घोषित करते हैं। दूसरी अन्य चीजें हमारे लिए गौण हैं। संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि अब हम सीधे तौर पर द्वितीय वैटिकन महासभा की शिक्षा पर आते हैं और अद जेंतेस के कुछ आज्ञप्तियों को पुनः पढ़ते हैं, जो कलीसिया की प्रेरिताई क्रियाकलाप का विवरण प्रस्तुत करता है। इन पदों का महत्व आज भी हमारी जटिल और असंख्य संदर्भ में बरकरार है। अद्यंतस ईश्वर के पिता तुल्य प्रेम पर चिंतन करने का निमंत्रण देता है, जो अपने बेशुमार और प्रेममय करुणा के कारण हमें अपने पास आने और अपने जीवन में सहभागी होने का निमंत्रण देते हैं। वे हमें अपनी उदारता से भरती और अपनी दिव्य करुणा में हमारे ऊपर अपनी भलाई को उड़ेलना बंद नहीं करते हैं। अतः जिन्होंने सारी चीजों की सृष्टि की, उसका शासन सदा सर्वदा बना रहे, जो हर किसी पर और साथ ही सब समय अपनी महिमा और खुशी हम पर प्रकट करते हैं। पिता के प्रेम किसी एक विशेष समुदाय के लिए नहीं है, हम में से हर कोई इसे अपने मन और हृदय में धारण करे, संत पापा ने कहा। उन्होंने कहा,
Questo brano è fondamentale perché dice che l'amore del padre ha predestinato ogni essere umano. L'amore di Dio non è per un gruppetto soltanto.
कि यह पद हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पिता के प्रेम को सारी मानव जाति के लिए प्रकट करता है। यह वह प्रेम है जो पुत्र की प्रेरिताई में हर नर और नारी के लिए पहुंचता है, जो मुक्ति के माध्यम और हमारे उद्धार करता है, तथा पवित्र आत्मा की प्रेरिताई द्वारा जो हर एक पर क्रियाशील हैं, चाहे वे ख्रिस्तीय और गैर ख्रिस्तीय क्यों ना हों। धर्म सभा हमें आगे इस बात की याद दिलाती है कि यह कलीसिया का कार्य है कि वह यीशु ख्रिस्त की प्रेरिताई को निरंतर आगे बढ़ाए, जो दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने हेतु भेजे गए। अतः अद जेंतिस आगे कहता है, कलीसिया पवित्र आत्मा की प्रेरणा से उस मार्ग का अनुसरण करे जिसमें यीशु चले, दरिद्रता और आज्ञाकारिता का एक मार्ग, सेवा और मृत्यु तक आत्म बलिदान का मार्ग, उस मृत्यु से पुनर्जीवित होकर वे विजयी हुए। यदि वह इस मार्ग में निष्ठावान बने रहती तो कलीसिया की प्रेरिताई एक प्रभु प्रकाश या ईश्वर के विधान की एक अभिव्यक्ति और यह दुनिया तथा विश्व के इतिहास में उसकी परिपूर्णता बनती है। प्रिय भाइयों एवं बहनों, संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि यह छोटी व्याख्या हमें कलीसिया में हर प्रेरितिक के प्रेरिताई उत्साह को समझने में मदद करती है। प्रेरितिक उत्साह हमारे लिए ईश्वर की कृपा है, जिसे हमें अपने में सुरक्षित रखने की जरूरत है, क्योंकि तीर्थ यात्री और सुसमाचार प्रजा के रूप में हम किसी को सक्रिय और निष्क्रिय व्यक्तियों के रूप में नहीं पाते हैं। हमारे बीच ऐसे नहीं कि कुछ लोग सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं तो कुछ चुपचाप हैं, ऐसी बात नहीं है। सभी बपतिस्मा प्राप्त, चाहे वे कलीसिया के किसी भी परिस्थिति में हैं या उनके विश्वास का स्तर कुछ भी क्यों ना हो, अपने में सुसमाचार प्रचार के माध्यम हैं। बपतिस्मा प्राप्त करने और इसके फलस्वरूप कलीसिया का अंग होने से हर बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति कलीसिया की प्रेरिताई में सहभागी होता है और इस भांति वह ख्रीस्त राजा, पुरोहित और नबी की प्रेरिताई का अंग बनता है। संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि यह कार्य सभी जगह और हर परिस्थिति में एक है, यद्यपि इसका निर्वहन विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग तरीकों से होता है। यह हमें इस बात के लिए आह्वान करता है कि हम अपने में कठोर या कड़ा ना हो। विश्वासी का प्रेरितिक उत्साह अपनी साक्ष्य और सुसमाचार की घोषणा को एक सकारात्मक रूप में व्यक्त करता है। वह यीशु ख्रिस्त की तरह घायल मानवता के संग नए रूप में पेश आता है। यदि कोई व्यक्ति अपने को सुसमाचार प्रचारक कहता और उसमें सेवा के भाव नहीं है, वह अपने को स्वामी की भांति देखता, तो वह सुसमाचार प्रचारक नहीं बल्कि एक बेचारा व्यक्ति है। पिता के प्रेम में स्रोत और पुत्र तथा पवित्र आत्मा की प्रेरिताई की ओर लौटना हमें अपने को व्यक्तिगत शांति में जड़ित रखना नहीं है। इसके विपरीत यह हमें जीवन के मुफ्त उपहार और उसकी परिपूर्णता को देखने में मदद करता है, जिसके लिए हम सभी बुलाए गए हैं। एक उपहार जिसके लिए हम ईश्वर की प्रशंसा और उनका धन्यवाद करते हैं। यह हमें उन चीजों को पूर्ण रूपेण जीने में मदद करता है जिसे हमने पाया है, जिसे हम उत्तरदायी ढंग से दूसरों के संग चलते हुए साझा करते हैं, चाहे हमारे जीवन का इतिहास कितना भी कठिन और मुश्किल भरा क्यों ना हो, हम ईश्वर से कृपा की याचना करें जिससे हम अपने ख्रिस्ते बुलाहट को एक निधि की भांति लेते हुए इसे दूसरों के संग बांट सकें। इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सभों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Sin nomine Domini benedictum, et in nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने वाटिकन में संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में बुधवारी आम दर्शन समारोह के दौरान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी महिलाओं का अभिवादन किया और बधाई देते हुए उनके लिए विशेष रूप से तालियां बजवाई। संत पापा ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं सभी महिलाओं के बारे में सोचता हूँ। उनकी रचनात्मक दृष्टि और कोमल हृदय के साथ वास्तविकता को समझने की क्षमता के माध्यम से एक अधिक मानवीय समाज के निर्माण की उनकी प्रतिबद्धता के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ। यह केवल महिलाओं का विशेषाधिकार है। प्रांगण में उपस्थित सभी महिलाओं के लिए एक विशेष आशीर्वाद और तालियां, वे इसी योग्य हैं। इतना कहना था कि तालियों की गड़गड़ाहट पूरे प्रांगण में गूंज उठी। इसके बाद संत पापा ने वहां उपस्थित सभी विश्वासियों से यूक्रेन वासियों के लिए अपील की। संत पापा ने कहा, शहीद यूक्रेनी लोगों को हमेशा अपने दिलों में और अपनी प्रार्थनाओं में याद रखना है। उनके दर्द को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। विशेष रूप से पोलिश विश्वासियों को संबोधित करते हुए जहां पल्लियां और प्रेरितिक समुदाय चालीसा के लिए बिनती उपवास आयोजित कर रहे हैं, संत पापा फ्रांसिस ने कहा, यह समय आपकी मानवता अच्छे फल पैदा करने के लिए और ख्रिस्तीय धर्म की गुणवत्ता पर मनन चिंतन का क्षण बने, साथ ही उन लोगों के पक्ष में जिनका आप अपने देश में स्वागत करते हैं, विशेष रूप से यूक्रेनियों का। इसके बाद संत पापा ने रेखांकित किया, चालीसा सुसमाचार और मानवता के लिए खुशी से सेवा प्रदान करने के लिए हमारी मिशनरी गतिशीलता को पुनर्जीवित करने के लिए एक अनुकूल समय हो सकता है। कलीसिया के मन परिवर्तन और तपस्या करने के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए हम खुशी के साथ दुनिया में सुसमाचार की घोषणा करने में सक्षम हो पाएंगे। उधर वीता ए प्रिंसिएरो द्वारा प्रकाशित अन्ना मरिया तोरेंटोला द्वारा संपादित एक बेहतर दुनिया के लिए अधिक महिला नेतृत्व हमारे आम घर के लिए इंजन के रूप में देखभाल खंड के लिए संत पापा फ्रांसिस ने प्रस्तावना लिखी है। यह किताब महिलाओं के बारे में है, उनकी प्रतिभा, उनकी क्षमताओं और कौशल के साथ साथ उन असमानताओं, हिंसा और पूर्वाग्रहों के बारे में है जो अभी भी महिला जगत की विशेषता है। संत पापा लिखते हैं, महिलाओं के मुद्दे मेरे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। मैंने अपने कई भाषणों में उनका जिक्र किया है, इस बात पर जोर देते हुए कि महिलाओं को पूर्ण रूप से सशक्त बनाने के लिए अभी और कितना कुछ किया जाना चाहिए। अन्य बातों के अलावा मैंने कहा है कि पुरुष और महिला समान नहीं है, एक दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है। यह सिर्फ इतना है कि पुरुष सद्भाव नहीं लाता है, यह महिला है जो सद्भाव लाती है, जो हमें दुलारना, कोमलता से प्यार करना और दुनिया को कुछ सुंदर बनाना सिखाती है। हमें अन्याय और अस्वीकार्य युद्ध से लड़ने के लिए सद्भाव की बहुत आवश्यकता है। कलीसिया महिलाओं के सम्मान से भी लाभान्वित हो सकती है, जैसा कि मैंने अक्टूबर 2019 में पान अमाजोन क्षेत्र के धर्माध्यक्षों की धर्म सभा के समापन पर अपने भाषण में कहा था। हम अभी तक यह नहीं समझ पाए हैं कि महिला का कलीसिया में क्या महत्व है, और हम खुद को केवल कार्यात्मक पहलू तक ही सीमित रखते हैं, लेकिन कलीसिया में महिलाओं की भूमिका कार्य क्षमता से परे है और इस पर और काम जारी रहना चाहिए। महिलाओं के योगदान के बिना एक बेहतर, निष्पक्ष, अधिक समावेशी और पूरी तरह से स्थायी दुनिया का निर्माण संभव नहीं है। विविधता में समानता की एक स्थिर और स्थायी स्थिति का लक्ष्य रखने के लिए हमें हर संदर्भ में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अवसर खोलने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। महिलाओं के खिलाफ पूर्वाग्रहों के साथ ये अंतराल महिलाओं के खिलाफ हिंसा की जड़ में है। मैंने कई मौकों पर इस परिघटना की निंदा की है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा का पितृसत्तात्मक और उत्पीड़न में पुरुष संस्कृति से उत्पन्न एक खुला घाव है। हमें इस प्लेग को ठीक करने का उपाय खोजना चाहिए और महिलाओं को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे लगता है अगर महिलाएं अवसर की पूर्ण समानता का आनंद ले सकती हैं, तो वे शांति, समावेश, एकजुटता और अभिन्न स्थिरता की दुनिया के लिए आवश्यक बदलाव में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। उधर पिछले 10 वर्षों में वाटिकन में कार्यरत महिलाओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। वर्तमान में संत पापा के लिए 1,165 महिला कर्मचारी काम कर रही हैं, जबकि संत पापा फ्रांसिस के पदभार ग्रहण करने वाले वर्ष 2013 में उनकी संख्या केवल 846 थी। वाटिकन अधिकारियों के वाटिकन न्यूज सर्वेक्षण के अनुसार इससे पहले कभी भी महिला कर्मचारियों की संख्या और कुल कर्मचारियों में उनकी हिस्सेदारी इतनी अधिक नहीं रही। वाटिकन में कुल कार्यबल में महिलाओं की प्रतिशत वर्तमान में 19.2 से बढ़कर 23.4% हो गया है। ये आंकड़े दो प्रशासनिक इकाइयों, परम धर्मपीठ और वाटिकन सिटी राज्य को एक साथ दर्शाते हैं। उधर रोम के पास साक्रोफानो में चेयर ऑफ वेलकम, स्वागत का सिंहासन के उद्घाटन के मौके पर पत्रकारों से मुलाकात करते हुए वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन ने प्रवासी आंदोलनों के नियमानुकूल ताकि यह सुरक्षित रहे का आह्वान किया, ताकि दक्षिणी इटली के कुत्रो जैसी त्रासदी फिर से कभी न हो। अपना संदेश देने से पहले कार्डिनल पारोलिन ने दक्षिणी इटली के कुट्रो में हाल ही में जहाज की तबाही की भयानक त्रासदी के बारे में एक पत्रकार के सवाल का जवाब दिया, जिसमें कम से कम 71 लोगों की जान चली गई थी। उन्होंने त्रासदी की चौंकाने वाली प्रकृति को याद किया और उनका मानना है कि प्रवासी स्वागत नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए एक आह्वान और कैसे कलीसिया ने सिद्धांतों और दिशा निर्देशों की एक पूरी श्रृंखला की पेशकश की है, जिसे इन नीतियों पर फिर से विचार किया जाना चाहिए। कार्डिनल पारोलिन के अनुसार आशा की यात्रा कहलाने वाली आपदाओं से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विचार प्रवासी प्रवाह की नियमितीकरण है, ताकि प्रवासन सुरक्षित रहे। उन्होंने कहा, जिस चीज की आवश्यकता है वह है एक स्वागत की, जो उस स्थिति को ध्यान में रखता है जहां से ये लोग आते हैं और जिस स्थिति में हम खुद को पाते हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।